जमुना तीरा बनचारी जामुना तीरा बनचारी जय राधा माधव पुण्य बिहारी जय माधव नविहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपद 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 जय प्रभुपद जय प्रभुपद 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 जय प्रभुपद जय ओम विष्णुपाद भ्रष्टराज का चार स्वान गिरी शिष्य भक्तिदान स्वामी प्रभुपाद की जय जय ओम विष्णुपाद त्रिलापृष्ठ भक्त श्रीधान स्वामी प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव बिंद की जय ग्रंथराश्रम भागवतम की जनता गौर हरि ब्रह्मानंद ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय तो भीष्म स्तुति श्लोक 24 बोर्ड पर लिखा हुआ है सा देव देवो भगवन् प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदैदं हिनोम्यम् प्रसन्नः सरुणलोचन उल्लसत् मुखं भुज ध्यान पथा चतुर्भुज मुखं भुज ध्यान पथा चतुर्भुज स देव देवो भगवान् प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हिनोम्यम् प्रसन्नः सरुणलोचन उल्लसत् मुखाम्बुजो ध्यानपथ चतुर्भुज दादाजी Oh, वे देव देव देवताओं के भी देवता प्रभुओं में श्रेष्ठ भगवान भगवान कृष्ण प्रतीक्षताम कृपया प्रतीक्षा करें कलेवरम शरीर को यावत जब तक इदं इस हिनोमि त्याग दूं अहम मैं प्रसन्न प्रसन्न हास हंसते हुए अरुण लोचन प्रातन कालीन सूर्य के समान लाल नेत्र उल्लसत सुंदर ढंग से सजाए मुखाम्बुज कमल के समान उनका मुख ध्यान पथ मेरे ध्यान के मार्ग में चतुर्भुज चार भुजा वाले नारायण अनुवाद और तात्पर्य भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद श्री प्रभुपाद की जाए। चतुर्भुज रूप उगते सूर्य की भांति अरुण नेत्रों तथा सुंदर रीति से सजाए मुस्कुराते कमल मुख वाले मेरे भगवान आप उस क्षण तक यहीं मेरी प्रतीक्षा करें जब तक मैं अपना यह भौतिक शरीर छोड़ न दूं। तात्पर्य विष्णुदेव अच्छी तरह जानते थे कि भगवान कृष्ण आदि नारायण हैं, उनके आराध्य देव चतुर्भुज नारायण थे, लेकिन वे यह जानते थे कि वे चतुर्भुज नारायण भगवान कृष्ण के पूर्ण अंश हैं। परोक्ष रूप में उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि भगवान कृष्ण अपने चतुर्भुज नारायण रूप में प्रकट हों। वैष्णव सदा ही अपने आचरण में विनित होता है, यद्यपि यह शत प्रतिशत निश्चित था कि इस शरीर को त्याग कर भीष्मदेव वैकुंठ जा रहे हैं, तो भी विनित वैष्णव के रूप में उन्होंने भगवान की सुंदर मुखाकृति देखनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि कहीं इस शरीर को छोड़ने के बाद वे भगवान का दर्शन न भी कर पाए। वैष्णव को भी कभी गर्व नहीं होता, वैष्णव को कभी गर्व नहीं होता। यद्यपि भगवान अपने भक्तों को अपने धाम में प्रवेश करने की गारंटी देते हैं, यहाँ पर भीष्मदेव कहते हैं जब तक मैं अपना शरीर त्याग न दूं, इसका अर्थ यह है कि यह महान सेनापति अपनी इच्छा से शरीर त्याग करेंगे, वे प्रकृति द्वारा बाध्य नहीं हैं। वे इतने शक्तिशाली थे कि जब चाहते अपने शरीर में बने रह सकते थे। यह वर उन्हें उनके पिता से प्राप्त हुआ था। उनकी इच्छा थी कि भगवान अपने चतुर्भुज नारायण रूप में उनके समक्ष रहें, जिससे वे उनका ध्यान कर सकें और समाधि दशा को प्राप्त हो लें। तब उनका मन भगवान का चिंतन करके पवित्र हो जाए, फिर वे कहीं भी जाएं, उनकी परवाह नहीं रहेगी। एक शुद्ध भक्त भगवत धाम वापस जाने के लिए कभी भी चिंतित नहीं रहता, वह तो भगवान की इच्छा पर पूर्णतः आश्रित रहता है। यदि भगवान उसे नरक भी भेजना चाहें तो भी वो समान रूप से तुष्ट होता है। शुद्ध भक्त की तो एक ही इच्छा रहती है कि वह सदा भगवान के चरण कमलों का चिंतन करता रहे। विष्णुदेव की इतनी ही इच्छा थी कि उनका मन भगवान के चिंतन में लीन रहे, और वे इसी तरह चल बसे। शुद्ध भक्त को की सर्वोच्च अभिलाषा यही होती है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकय चक्षुर्जिन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भीष्म महाराज युधिष्ठिर से कहे कि तुम्हारा संबंध कृष्ण के साथ में है, क्योंकि तुम्हारे मातुल्य हैं, मामा के बेटे हैं, मेरे भाई हैं, लेकिन मेरा वह संबंध नहीं है। लेकिन मेरा उनसे संबंध है वह भगवान और भक्त का। इसीलिए मेरे भक्ति से प्रसन्न हो करके तथा अपि एकांत भक्तेषु पश्य भूपानुकंपितम यन में असूय त्यजत साक्षात कृष्णो दर्शनम आगत। हमारा उनसे जो संबंध है वह है एकांत भक्तेषु, भक्ति का संबंध है, और जिस भक्ति के संबंध के चलते भगवान हमारा दर्शन करने के लिए आए हुए हैं, हमसे मिलने के लिए आए हुए हैं, हमारे समक्ष आए हुए हैं। अब इस प्रकार से अपने भक्ति को प्रकट करते हुए भक्त्या आवेश मनो यस्मिन् वाचायन नाम कीर्तयन त्यजन कलेवरम योगी मुच्यते काम कर्म भी। वे पुरुषोत्तम भगवान जो एकाग्र भक्ति तथा चिंतन से एवं पवित्र नाम के कीर्तन से भक्तों के मन में प्रकट होते हैं, वे उन भक्तों को उनके द्वारा भौतिक शरीर को छोड़ते समय सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त कर देते हैं। तो यहां पर मुच्यते काम कर्म भी, संसार में विभिन्न योनियों में इस जन्म लेने का कारण जो है वह है काम कर्म भी, कर्म फल। भक्ति एक ऐसा पद्धति है जिससे कर्म फल जर करके राख हो जाते हैं। किंतु जो भक्ति भाजा, कैसे है श्लोक, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा। कर्माणि मतलब कर्म फल, निर्दहति मतलब निकृष्ट रूपेण दहति खत्म हो जाता है, किंतु च भक्ति भाजा, किंतु मतलब और कोई तरीका नहीं है, एकमात्र तरीका है वह है भक्ति, भक्ति के द्वारा। और भक्ति के लिए कहते हैं, भक्ति का यहां प्रकार बताए हैं, यस्मिन वाचा यन्नाम कीर्तयन, मन को भगवान में निश्चित लगा करके जिह्वा से भगवान नाम लेते हुए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यही स्थिति होनी चाहिए शरीर को त्यागते समय। शरीर को त्यागते समय यह स्थिति होना चाहिए कि भक्त्या आवेश्य, भक्ति में आवेशित होकर के या भक्ति पूर्वक मन को भगवान में लगा देना चाहिए। मृत्यु के समय मन भगवान में लगा होना चाहिए। जिह्वा से भगवान के नाम का कीर्तन होता रहे, और ऐसा जब करेंगे तो जिस छवि का हम दर्शन कर रहे हैं उसी छवि का गुणानुवाद हो रहा है। तो इस प्रकार से योगी होता है, जो भक्त होता है, मुच्यते काम कर्म भी, वो मुक्ति को प्राप्त करता है, समस्त कर्म बंधनों से उसका छुटकारा मिल जाता है। तो भक्ति का महिमा वर्णन करने के बाद अब पितामह भीष्म अपना शरीर त्यागना चाहते हैं। तो भगवान उनके आराध्य देव हैं चतुर्भुज नारायण, और यहां पर कृष्ण का दर्शन भी इसी रूप में कर रहे हैं। भगवान के सौंदर्य का वर्णन किया गया है कि उनका जो नेत्र कमल है अरुण लोचनम, सूर्य के उगते हुए सूर्य के समान लालिमा युक्त लाल लाल आंखें हैं, और प्रसन्न हास भगवान मुस्कुरा रहे हैं। भगवान के मुखारविंद में से पांच प्रकार के बाण निकलते हैं, पुष्प बाणाय धीमहि, पांच प्रकार के बाण निकलते हैं, जो बाण भक्तों के जीवन में जब बिरते हैं तो जैसे एक बाण निकलता है उनके आंख से, एक बाण निकलता है उनके चितवन से, एक बाण निकलता है उनके कपोल से, एक बाण निकलता है उनके वाणी से, और एक बाण निकलता है उनके भ्रकुटी से। तो इस प्रकार से ये पांच बाण से भक्तों को बेधते हैं। तो वही मानो चाह रहे हैं कि मुझे भगवान बेधें, यानी मेरा मन उनमें लगा रहे इन बाणों के द्वारा। तो वे भगवान हंसते रहे और तब तक वे यहां पर रहे, सदेव देव भगवान प्रतीक्षता, जब तक से मैं अपने शरीर को त्याग न दूं। कलेवरम यावद इदम हिनोमी अहम, जब तक से मैं अपने शरीर को त्याग न दूं तब तक से भगवान यहीं पर खड़ा रहे। देखिए सबके सामने ये कह रहे हैं, कृष्ण वहीं खड़े हैं, इसलिए कहते हैं सदेव देव, हे देवताओं के भी देवता, हे सर्वेश्वर भगवान प्रतीक्षताम, तुम प्रतीक्षताम, आप प्रतीक्षा करें, आप यहीं पर रहें। तो भगवान कहते हैं कि मैं तो यहीं खड़ा हूं, मैं कहां जा रहा हूं, आपके सामने ही खड़ा हूं। कहते हैं कि कितना देर खड़ा रहने में, मैं कलेवरम यावद इदम हिनोमी हम, जब तक मैं अपने शरीर को त्याग न दूं। तो कोई प्रश्न कर सकता है कि भीष्म पितामह के पास तो इच्छा मृत्यु का वरदान था, यदि वे कभी अपना शरीर त्यागना नहीं चाहते तो इसका मतलब कि भगवान वहीं खड़े रहे हमेशा के लिए। यदि वे शरीर नहीं खड़ा त्यागना चाहते थे और भगवान क्यों ऐसा उनकी इच्छा थी कि आप खड़ा रहे, तो भगवान वहां खड़ा भी रह सकते, भगवान आए हुए थे पितामह भीष्म के लिए, लेकिन पितामह भीष्म शरीर त्याग रहे थे, वो त्यागना चाहते थे। जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों गए थे, और स्पेशली जब अर्जुन पूछने गए थे कि आपका मृत्यु कैसे हो सकता है, वो भी कृष्ण के सलाह पर, तो पितामह भीष्म समझ गए थे कि अब मेरा कोई यहां पर काम नहीं है, अब चलना चाहिए यहां से। तो मेंटली प्रिपेयर हो गए थे कि अब मुझे अपना शरीर त्यागना है। तो ज्यादा समय नहीं, तो यावद इदम, जब तक से इदम या शरीर हिनोमी अहम, जब समय से त्याग न दूं। और इस बात को महाराज युधिष्ठिर समझ गए कि अब पितामह शरीर त्यागने जा रहे हैं। तो युधिष्ठिर महाराज का शोक खत्म हो चुका था, जो जिस डिप्रेशन में युधिष्ठिर महाराज थे, जिस शोक में थे, वो अब शोक खत्म हो गया था। अब वे हस्तिनापुर के राजा थे, भरतर्षभ हैं, अनाथ नाथ, अनाथों के नाथ थे। अब जन कल्याण के लिए पितामह रूपी सूर्य अब डूब रहे हैं, तो जो फायदा हो सके उसे प्राप्त करना चाहिए। तो सुत गोस्वामी कहते हैं युधिष्ठिर तत आकर्ण्य शयानम सरपंजरे अपृक्षत विविधान धर्मान ऋषिणाम च अनुष्णुमताम। तो यहां पर आकर्ण्य, आकर्ण शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है आय के श्लोक में, मतलब सुन करके। उन्होंने सुना, भगवान से कहते हैं कि भगवान आप तब तक यहां खड़ा रहे जब तक से मैं अपना शरीर त्याग न दूं। तो यह सुन करके वे चिंतित होकर अपना शरीर त्यागने जा रहे हैं, इसलिए वे उनके साथ आग्रह किए, वे आग्रह किए उन महर्षियों की उपस्थिति में ही कि मेरे पास कुछ प्रश्न हैं और उन प्रश्नों का आप उत्तर दें। अपृच्छ विद्वान धर्मान विविधान, तो वे विभिन्न प्रकार के धर्मों के संबंध में वे पीछे उन ऋषियों के मध्य में वहां खड़ा होकर के। पुरुष स्वभाव विहिता यथा वर्ण यथा आश्रमम वैराग्य राग उपाधिभ्याम। अमनात उभय लक्षणान, अब कहते हैं पुरुष स्वभाव विहिताम, अलग अलग लोक का अलग अलग वर्ण और आश्रम के अनुसार अलग अलग स्वभाव होता है। विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं, फिर भी इसमें से प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग के जो अलग अलग तरीके हैं उसका आप वर्णन करें। प्रवृत्ति मार्ग यानी इस संसार में सुख भोगने का मार्ग और निवृत्ति मार्ग, उभयम लक्षणा, दो लक्षण है संसार में, एक प्रवृत्ति मार्ग और एक निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग को प्रभुपाद जी कहते हैं इमीडिएट हैप्पीनेस और निवृत्ति मार्ग कहते हैं अल्टीमेट हैप्पीनेस। तो कुछ लोग हैं संसार में जो कि इमीडिएट हैप्पीनेस चाहते हैं और कुछ लोग अल्टीमेट हैप्पीनेस चाहते हैं, तो दोनों का आप कृपा करके वर्णन करें कि निवृत्ति मार्ग क्या है और प्रवृत्ति मार्ग क्या है। तो निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग के संबंध में जानना चाहते थे वर्णाश्रमों के अनुसार। और क्या पूछे कर संक्षिप्त में है, महाभारत में इसका विशद वर्णन है। कहते हैं दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभाग स स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास जोगत। दान धर्म, दान के स्वरूप क्या है, दान का लक्षण क्या है, देय पदार्थ क्या है, देय किसको देना चाहिए इत्यादि इत्यादि, तो दान धर्म के विषय में जानना चाहते थे। और राजधर्म, दान देने से व्यक्ति संतुष्ट होता है, ये वैदिक संस्कृति है, वैदिक पद्धति है, जहां पर सिखाया जाता है देना, दान देना, दे करके व्यक्ति सुखी होता है। आज के समाज में दुख की बात है कि लोग देते नहीं हैं, केवल लेते हैं, लेना बैंक खोले हैं, नाम लिखे हैं देना बैंक, लेकिन है लेना बैंक, लेते रहते हैं। तो देने से व्यक्ति सुखी होता है न कि लेने से। मैं कई उदाहरण देता हूं खाने और खिलाने में। खाने वाला व्यक्ति प्रसन्न रह सकता है लेकिन हमेशा नहीं, कुछ समय तक। जब पेट भर जाएगा तो एक रोटी भी ज्यादा हो जाएगा, लेकिन खिलाने वाला जो है उसमें प्रसन्नता के थोड़ा और ले लीजिए, एक रोटी और ले लीजिए, थोड़ा एक सब्जी और ले लीजिए, है ना। खिलाने वाला में आनंद आता है तो देने में आनंद आता है। या मैं ग्रॉस उदाहरण दे सकता हूं और वह है पेट साफ करना। पेट साफ हो जाता है तो मन हल्का हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन बना रहेगा तो दिमाग खराब रहेगा। तो जो लोग धन अपने पास रखते हैं उसको वितरण नहीं करते, वितरित नहीं करते, बांटते नहीं है, उनको कॉन्स्टिपेशन हो गया है, समझ लो मेंटली डिस्टर्ब है, कभी सुखी नहीं रहेंगे, बहुत भय बना रहेगा उस धन से, सब पर शंका बनी रहेगी, कहीं बेटा ज्यादा खर्चा न करने, कहीं पत्नी ना ले जाए। भागवतम वर्णन किया गया कि रात में कभी कभी सपना देखते हैं, हिसाब करते रहते हैं कि इसको दे दिया हूं, सो भी नहीं पाते हैं, उन्हें ऐसा कॉन्स्टिपेशन होता है कि इतना धन होने के बाद बहुत चिंतित रहते हैं, रात को नींद नहीं आती है, हिसाब करते रहते हैं सोते समय। दिन में तो हिसाब करते ही हैं, रात को भी हिसाब करते हैं, लेकिन जो देता रहता है, जिसमें देने की भावना होती है, वो जागृत अवस्था, सुप्त अवस्था, सुप्ति अवस्था, सब अवस्था में वो सुखी रहता है। तो शास्त्र इसका अनुमोदन करता है कि देना चाहिए। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि दान सबको पवित्र, पावनानी मनीषिणाम, भक्तों को भी देना सीखना चाहिए, केवल लेना ही नहीं सीखना चाहिए, देना सीखना चाहिए। जो भी है उसमें से कुछ दे दो, बांटते रहो, दो चादर हो गया दे दूसरे को, अभी जाड़ा का दिन आ रहा है ना, कि सब रखते रहो, कुछ देना सीखना चाहिए, इससे हम लोग पवित्र होंगे, प्रसन्न रहेंगे। तो दान धर्म, राजधर्म, राजा का धर्म क्या होता है, राजा का प्रथम धर्म है प्रजा का रक्षा करना, इसलिए वो क्षत्रिय है, छत्र जिसके हाथ में छाता है और दूसरे का रक्षा करे वो छत्र क्षत्रिय। राजधर्म क्या है? और मोक्ष धर्म यानी वह धर्म जिससे मुक्ति की प्राप्ति हो सके, और इसके अलग अलग विभाग। स्त्री धर्म, स्त्रियों के लिए स्पेशल स्थान दिया गया है। शास्त्र स्त्रियों का कितना सम्मान करता है, आजकल के लोग समझते हैं कुछ उल्टा है। शास्त्र में स्त्रियों को खूब सम्मान दिया जाता है। स्त्री धर्म, स्त्रियों का धर्म क्या है? और अंत में जिसे सबका कल्याण है वह है भगवत धर्मा, क्योंकि पितामह भीष्म एक महान भागवत हैं, वो भगवान के विषय में अच्छी तरह से जानते हैं, एक महाजन है, महाजनो जिन कथा सुपंथा, वही रास्ता अच्छा रास्ता है जिस रास्ते से महाजन लोग चले हैं, और पितामह भीष्म एक महाजन है, इसलिए भगवत धर्म। समास व्यास, समास मतलब संक्षिप्त और व्यास मतलब विस्तार से, तो इसको आप संक्षिप्त या विस्तार से जैसे जैसे हो सकता है, कुछ संक्षिप्त में हो जाए वर्णन और कुछ विस्तार में वर्णन होगा, तो आप कृपा करके इसे हमें समझाने का प्रयास करें, ये हमें बताएं। तो इस प्रकार से जब ज्योतिषी महाराज प्रश्न किए तो उनके प्रश्नों का उत्तर दिए, धर्म अर्थ काम मोक्षश्च सहोपायान यथा मुने नाना ख्यान इतिहासेषु वर्णयामास तत्वविद्। यहां नाना अख्यान इतिहासेषु, जब भी कोई चीज बताना होता है तो उदाहरण और कहानियां कह करके बताना चाहिए। सिद्धांत तो ठीक है लेकिन इतिहास और आख्यान कहकर कोई बात बताने से उसका, हमारे एक भक्त थे उनका नाम है बामन देव, विचार नहीं रहे, वह खुलासा करना चाहिए। तो उर्दू शब्द है खुलासा, खुलासा मतलब खोल देना, खोल खोल कर बताना चाहिए, तो यानी समझा देना चाहिए। जब कुछ बात कह रहे हैं तो पितामह भीष्म जो जो प्रश्न किए थे युधिष्ठिर महाराज, उनके समस्त प्रश्नों का उत्तर भली भांति दिए, क्योंकि सबसे भली भांति परिचित थे, और विभिन्न प्रकार का उपाख्यान कहते हुए और साथ साथ इतिहास कहानियां कहते हुए समझाए। ये कहानियां जो हैं, कभी कभी कुछ कथाएं होती हैं जो कि शास्त्र से होती हैं कहानियां, और कभी कभी परिस्थितियों से कहानियां बनती हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जो जो कथाएं अपने प्रवचन में कथा कहे हैं, कहानियां कहे हैं, उसे कहते हैं उपदेशेर उपाख्यान, उपदेश से उपाख्यान। जैसे वो कहानी आप जानते हो, यस नो वेरी गुड, जानते हो कहानी यस नो वेरी गुड का? नहीं जानते? अच्छा बताया था। अब वो यस नो वेरी गुड कहानी, कोई बोले कि आप कहां से कह रहे हैं, किस शास्त्र में है, तो किस शास्त्र में नहीं है वो यस नो वेरी गुड। या चाहे वो बुढ़िया अपने बच्चे को पढ़ाना चाहती थी और उसके लिए ट्यूशन कराने के लिए एक टीचर रखा, और जब टीचर आया तो बच्चे को पढ़ा रहा था, तो ज्योमेट्री पढ़ा रहा था, तो वो ए बी सी डी एक त्रिभुज है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी जो भी ए बी सी डी पढ़ा रहा था, तो एक दिन बड़ा ध्यान से सुन के हमारे बच्चे को क्या पढ़ा रहा है, तो सुनी कि ए बी सी पढ़ा रहा है। दूसरे दिन सुने वो भी ए बी सी डी पढ़ा रहा था। तीसरे दिन सुने वो भी ए बी सी डी पढ़ा रहा था। वो त्रिभुज के तीन भुजाएं होती हैं ए बी सी, बी ए सी है, सी ए बी, वही पढ़ा रहा था उसी में। अलजबरा पढ़ा रहा था, कुछ पढ़ा रहा था, जो ही पढ़ा रहा था, लेकिन एबीसीडी था। तो एक दिन सुनी, दो दिन सुनी, तीन दिन, चार दिन, सोची कि मैं इतना परिश्रम करती हूँ बच्चे को पढ़ाने के लिए, और ये बदमाश पहले दिन से हमारे बच्चे को एबीसीडी पढ़ा रहा है, उठाई झाड़ू और चली मारने के लिए, बदमाश, बक क्या पढ़ा रहा है तुम, एबीसीडी पढ़ा रहा है। अब कोई पूछे कि ये किस शास्त्र से है, तो इसलिए नाना आख्यान इतिहासेषु, कुछ तो होगा जो इतिहास होगा, जो शास्त्रों से होगा, और कुछ होगा केवल उपाख्यान होगा। तो उपाख्यान और इतिहास, इन दो चीजों समझाना चाहिए। लक्ष्य ये है जिससे हम बात कर रहे हैं वो समझ जाए बस। तो पितामह भीष्म इस प्रकार से समझाए। उसी समय क्या हुआ, धर्मा प्रवर्धत तस्य सकाल प्रत्युपस्थित या जोगिना छंद मृत्यु वांछिती उत्तरायण। जब इस प्रकार से वृत्तिपरक कार्यों के विषय में धर्म का निरूपण कर रहे थे तो वह काल उपस्थित हुआ जिस समय योगी लोग अपना शरीर त्यागना चाहते हैं, और वह समय था उत्तरायण का समय। उत्तरायण का प्रतीक्षा कर रहे थे। सामान्य अर्थ तो यही हुआ कि पितामह भीष्म 15 दिन तक सरसैया पर पड़े थे क्योंकि दक्षिणायन चढ़ रहा था, और उत्तरायण का एक महीना में दो अयन होता है, उत्तरायण और दक्षिणायन। जब सूर्य उत्तर की तरफ प्रवेश करते हैं तो उत्तरायण कहा जाता है, लेकिन आचार्य गण कहते हैं कि वे उत्तरायण का प्रतीक्षा कर रहे थे। उत्तरायण का अर्थ है उत्तरा अयन इति उत्तरायण। उत्तरा के गर्भ में जो आए थे वे उनका प्रतीक्षा कर रहे थे, यानी कृष्ण का प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताए हैं कि पितामह भीष्म जब चाहते तो अपना शरीर त्याग कर सकते थे, कभी भी अपना शरीर त्यागते भगवान के धाम में जाते, उसमें कोई तकलीफ नहीं था। इतने महाजन थे, उनके लिए उत्तरायण का प्रतीक्षा करने का कोई प्रावधान नहीं है, कोई उसका उत्तरायण हो दक्षिणायण हो कभी भी शरीर त्यागे तो। सामान्य लोगों के लिए ठीक है उत्तरायण, लेकिन भीष्म पितामह के लिए कोई जरूर नहीं था। वे अपने अनुसार जब चाहे तब अपने शरीर को त्याग सकते थे। यहां पर कहते हैं प्रभुपाद जी, समान रूप से अग्निदेव के तेज समय जब सूर्य उत्तरायण होता है तभी अपना शरीर त्याग करते हैं। इसी में है कि वे उत्तरायण से कोई लेना देना नहीं था। वो तो उत्तरायण का अर्थ है कि जिसके गर्भ में, उत्तरा के गर्भ का जो रक्षा किए वे भगवान आए तब वे अपना शरीर त्यागे। तो ये भगवान अब आ गए थे और इसलिए वे अब अपना शरीर त्याग करना चाहते हैं। यहां पर आगे का जो श्लोक है उसमें पितामह भीष्म का वर्णन किया गया है। तदोपसंहित गिरा सहस्त्रणी विमुक्त संग मन आदि पुरुषे कृष्णे लसत पीत पटे चतुर्भुजे पुरास्तिते अमिलित द्रिक व्यधारयत। पितामह भीष्म जो महारथी थे, अभी अभी युधिष्ठिर को इतना सुंदर बात बतलाए, बहुत लड़ाई लड़ चुके थे, बहुत लोगों का जो रक्षा कर चुके थे, अब वे बोलना बंद कर दिए और समस्त बंधनों से, सब जगह से अपने मन को हटा करके विमुक्त संग, सब जगह से अपने संग को हटा लिए। उनका मन पांडव में लगा था, उन लोगों से या जहां जहां मन लगा हो वहां से मन हटा करके मना आदि पुरुष से आदि पुरुष में लगा लिए। हम लोगों को आज मृत्यु हो तो हम लोग ऐसा करने में सक्षम हो सकते हैं कि सब जगह से मन हटा करके और भगवान में लग जाए, बल्कि मृत्यु के समय भगवान से मन हट करके सब जगह लग जाता है। क्या क्या करना बाकी रह गया है उधर मन लग जाएगा। तो भीष्म पितामह जैसा हम लोगों को भक्ति करना चाहिए, और भक्ति करने से संभव है कि सब जगह से मन हट सकता है। तो यह बात बड़ा इंपॉर्टेंट है, विमुक्त संग मन आदि पुरुषे, सब जगह से मन को हटा करके आदि पुरुष भगवान में वे अपना मन लगा लिए। जो भगवान उनके सामने खड़े थे, एक टक अपलक दृष्टि से, मन तो लग ही गया उनका दृष्टि भी लगा था। कृष्णे लसत पीत पटे चतुर्भुजे, जो पीत वस्त्र धारण किए हुए चतुर्भुज रूप में। प्रश्न उठ सकता है कि कृष्ण तो वहां पर द्विभुज रूप में थे, तो पितामह यहां पर बार बार चतुर्भुजे क्यों कहा गया है, पहले भी अभी भी? क्योंकि भगवान आए थे पितामह भीष्म के इच्छा को पूरा करने के लिए, और पहले के श्लोक में बताया गया है चतुर्भुज मुखाम मुझे ध्यान पथस चतुर्भुज। प्रभुपाद जी कहते हैं कि उनके आराध्य देव जो थे वे चतुर्भुज भगवान थे, नारायण, नारायण के आराधक थे पितामह भीष्म। तो यही तो कृष्ण का एक खूबी है कि कृष्ण जो भक्त जिस रूप में कृष्ण को चाहे उसी रूप में कृष्ण का दर्शन करेगा। द्विभुज रूप में आए हुए थे लेकिन पितामह भीष्म उनको चतुर्भुज रूप में देख रहे थे। जैसे जब महाभारत युद्ध प्रारंभ होने वाली थी तो केदली वन में भीम का मुलाकात हुआ था हनुमान जी से, और वहां पर जब बात हुआ था कि जब भीम ने रिक्वेस्ट किया कि आप हम लोगों का सहयोग कीजिए, तो हनुमान जी ने कहा कि मैं सहयोग करूंगा, मैं रहूंगा, मैं दो रूप में रहूंगा, एक अर्जुन के रथ पर रहूंगा ध्वज पर, और दूसरा जब तुम जोर से चिल्लाओगे आवाज करोगे तो मेरा आवाज तुम्हारे आवाज में लग जाएगा, जिससे कि अन्य जितने शत्रु लोग हैं उनका हृदय विदीर्ण हो जाएगा। लेकिन इसके पीछे एक कंडीशन है, और कंडीशन ये है कि मैं अपने प्रभु श्री राम का दर्शन करना चाहता हूं। तो भीमसेन तो कहेगा ठीक है, कृष्ण राम में अंतर क्या है, उनका ही आप दर्शन करेंगे। तो वहां पर अर्जुन के रथ पर बैठे थे और वहां पर दर्शन किए रामचंद्र का, रामचंद्र रथ हाँक रहे हैं, ये दर्शन किए हनुमान जी। तो भगवान अपने भक्तों की इच्छा को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो यहां पर द्विभुज रूप से कृष्ण थे लेकिन चतुर्भुज रूप दिखाई पड़ रहे थे। ये सब कुछ दृष्टि में है, ये हमारे दृष्टि में है, ये कुर्मा अवतार प्रभु हैं, ये हमारे दृष्टि में है और कुछ नहीं है। ऐसा भी तो होता है ना कि जैसे अब चश्मा खराब हो जाए या कुछ हो जाए तो डबल चेहरा दिखाई पड़ता है, कभी कैसे किया जाए तो डबल दिखाई पड़ेगा चेहरा, चेहरा एक ही लेकिन डबल दिखाई पड़ता है। और वस्तु का एक पिक्चर हमारे आंख में आ गया है जिसको हम वो देखते हैं, हो सकता है कोई वस्तु है भी नहीं, वो वस्तु नहीं है लेकिन उसको पिक्चराइज कर लिया गया तो हम समझते हैं कि वही वस्तु है। तो लेकिन यहां पर आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म है, और इस आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पर इस आसन में यहां पर एक कांटी है, क्या बोलते हैं, नेल, नेल बड़ा खतरनाक है, इसको मैं ऐसे किया अभी हाथ में लग गया,
एनीवे तो कृष्णे लसत पीत पटे चतुर्भुजे पुरा स्थिति अमिलित अमिलित दृक विधारयत अमलित यानी उनका पलक नहीं गिर रहा था, अपलक दृष्टि से उस चतुर्भुज भगवान का ध्यान कर रहे थे पितामह भीष्म। विशुद्धया धारणया हता शुभ तदिच्छया एव आसुगता युधाश्रम निवित्त सर्वेन्द्रिय वृत्ति विवेश्यत अस्तु तुष्टावजन्यम विसलन जनार्दनम। शुद्ध ध्यान द्वारा भगवान श्री कृष्ण को देखते हुए वे तुरंत समस्त भौतिक अशुभ अवस्थाओं से और तीरों के घाव से होने वाली शारीरिक पीड़ा से मुक्त हो गए। भगवान के दर्शन से ही पितामह भीष्म का शारीरिक पीड़ा दूर हो चुका था। इसे दो अर्थ निकलता है। एक अर्थ यह है कि सरसया पर जब पड़े हुए थे तो भी उनके शरीर में पीड़ा नहीं थी, तो भी पीड़ा नहीं थी, क्योंकि वे शरीर को त्याग चुके थे। जब मन से त्याग दिए तब अर्जुन मार सके, नहीं तो अर्जुन मार नहीं सकते थे। तो शरीर त्याग दिए थे और त्यागे हुए शरीर को चाहे कोई रसगुल्ला खिलाए, मरे शरीर को रसगुल्ला खिलाए, चाहे गाली दे, चाहे कुछ भी करे, क्या असर पड़ता है। तो शरीर त्याग चुके थे। और दूसरा अर्थ यह निकलता है कि पितामह भीष्म शरीर में रहते हुए भी शरीर से परे थे। जिस प्रकार से नारियल, जब नारियल सूख जाता है तो अपने सेल में रहता है, गुड़गुड़ गुड़गुड़ आवाज आता है, लेकिन सेल से परे होता है। तो दोनों रूप से देखा जाए तो ठीक है पितामह भीष्म के लिए। तो इस प्रकार से वे सारी इंद्रिय के कार्यकलाप को रोक लिए थे और दिव्य भाव से अब केवल आत्मस्वरूप उनका था, शरीर का थोड़ा भी गंध नहीं था। और उस आत्मस्वरूप से अब भगवान का स्तुति शुरू कर रहे हैं। तो भस्म स्तुति इन श्लोकों में श्लोक संख्या 32 से लेकर के श्लोक 36 तक है। आई बिलीव बयालीस तक, 32 से 42 तक 10 श्लोक है। 10 श्लोकों में पितामह भीष्म स्तुति किए हैं, जिसे भीष्म स्तुति कहा जाता है। श्री भीष्म उवाच इति मतिर्कल्पिता वितृष्णा भगवती सातम पुंगवे विहुम्नि स्वशोकमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिम् उपयेषु यदा प्रवाह। इस प्रकार से पितामह भीष्म अब यहां पर प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं जो अभी सोचता हूं, अनुभव करता हूं, ये सब हमारे इंद्रियों के बस में है और इंद्रियों के लिए ही मैं कुछ करना चाहता हूं। हम लोग जो भी कुछ करना चाहते हैं अपने इंद्रियों को तृप्त करने के लिए, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए। लेकिन पितामह भीष्म का जो मति था, कहते हैं अब अपने मति को मैं इतना दिन इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास किया, कर नहीं पाया, अब मैं इसको हटा करके इंद्रिय तृप्ति से भगवती सात्वतम पुंगवे विभूमि उन भगवान के चरणों में अपने इंद्रियों को लगा रहा हूं या लगाना चाहिए, स्तुति कर रहे हैं, लगाना चाहिए हम लोगों को। इंद्रियों को तृप्त करने में नहीं लगाना चाहिए अपने समय को, बल्कि वहां से हटा करके वितृष्णा है, विशेष तृष्णा। जब तक से इंद्रियां इंद्रिय तृप्ति में लगी रहेगी तो इंद्रियों को संतुष्ट कोई नहीं कर सकता है। जैसे कहा जाता है कोई बर्तन हो उसमें छिद्र हो, उसमें कितना भी आप पानी डालते जाओ पानी भर सकते हो बर्तन को नहीं, क्योंकि उसमें छिद्र है। ठीक वैसे ही हमारी इंद्रियां अपूर्ण है और इन अपूर्ण इंद्रियों को कभी हम संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इंद्रिय तृप्ति में न लगे। वितृष्णा, इंद्रिय तृप्ति से मन को हटा करके मति, इति मतलब इस प्रकार से पितामह विष्णु, मतिर उपकल्पिता वितृष्णा, अपने मन मन मतलब इंद्रियां, इनको इंद्रिय तृप्ति की भावना से हटा करके भगवती शाश्वत पुंगवे विभुमनी, उन भगवान को, किन भगवान को, शाश्वत पति। शाश्वत पति मतलब जदुवन शिरोमणि, यहां पर कृष्ण के संबंध को स्थापित कर रहे हैं। ये पूरा जो श्लोक है ये महाभारत का जो चित्रण है उसी का किया गया है, और एक श्लोक में ब्रज के गोपियों का बात कहा गया है, नहीं तो मोस्टली जो है वो अर्जुन से संबंधित जो बातें हैं वही बात कही गई है, महाभारत का बात है। तो कहते हैं और यह जो श्लोक है यह द्वारका वासियों का, तो यानी ये जितना जो प्रार्थना है इस प्रार्थना में द्वारिका, कुरुक्षेत्र और मथुरा मंडल, ये तीनों से ले लेकर के पितामह भीष्म प्रार्थना किए हैं। तो यह जो प्रार्थना है कहते हैं शाश्वत पुंगवे विभुमनी, शाश्वत पुंगवे, शाश्वत मतलब जदुवंशी, जो जदुवंश के परिवार में भगवान आए हुए हैं उनमें मेरा मन अब लगा रहे। और भगवान कैसे हैं, कहते हैं वे तो अपने आप में संतुष्ट हैं, उन्हें किसी चीज जरूरत नहीं है। स्व सुखम उपगते क्वचित बिहर तुम, कभी कभी आनंद लेने के लिए संसार में आते हैं, विभिन्न प्रकार का स्वरूप धारण करते हैं और विहार करते हैं। प्रकृतिम उपेशु यद प्रभाव, भगवान आकर के यहां अवतरित होते हैं और दिव्य आनंद का लाभ करते हैं, यह भौतिक संसार उनके द्वारा ही सृजित है। तो ये भौतिक संसार का सृजन भी भगवान का एक लीला ही है। यदि भगवान से संबंधित न होता तो फिर भौतिक संसार का बात ही क्यों होता। इसलिए यद प्रभाव, पितामह भीष्म इन सबको जानते हैं। तो ये श्लोक जो है, इस श्लोक में यद भगवान जो अकाम हैं, उन्हें कोई कामना नहीं है लेकिन फिर भी आते हैं अपना आनंद उठाने के लिए और विभिन्न प्रकार का लीला करते हैं, और जो लीला होता है वह लीला भक्तों के आनंद का विषय वस्तु होता है। अनुग्रहाय भक्तानाम, भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान आते हैं और विभिन्न प्रकार का लीला करते हैं। सुखदेव गोस्वामी से परिचित जी ने प्रश्न किया, जब देखे कि रास डांस का जो पूरा प्रकरण था, तो कहे तो भगवान धर्म का धर्म के विषय में बतलाते हैं और अधार्मिक कार्य कर रहे हैं, तो ये कहां तक ठीक है। तो उसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अनुग्रहाय भूतानां मानुषीं तनुमाश्रितम्, भगवान आते हैं मनुष्य रूप धारण करते हैं और विभिन्न प्रकार का लीला करते हैं। कहते हैं अनुग्रहाय भूताना, जीव को समझ अनुग्रहाय भक्ताना, भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए तो भगवान लीला करते हैं। उन्हीं लीलाओं का चिंतन कर रहे हैं और भगवान के स्वरूप का स्तुति कर रहे हैं। त्रिभुवन कमनम तमाल वरणम रविकर गौरांबरम दधाने
बपुरल ककुलावृतानुराब्जम विजय सखे रति स्तुमेन वद्धा विजय सखे रति अस्तुमेन वद्धा। मानो यहां पर कह रहे हैं पितामह भीष्म कि मेरा मति विजय सखे, अर्जुन का एक नाम है विजय, तो विजय के सखे पार्थ सारथी, पार्थ सारथी में मेरा मन लगा रहे। माने कह रहे हैं कि हे कृष्ण, आपसे मेरा फिजिकल संबंध तो नहीं है, मैं तो आपका भक्त हूं, लेकिन अर्जुन मेरे ही खानदान का है, अर्जुन मेरा ही प्रपौत्र है और आप उसके सखा हो, इसलिए मेरा कुछ संबंध तो हो ही गया ना। जैसे कभी कभी हम लोग किसी दोस्त के घर जाते हैं तो दोस्त से दोस्ती है तो बाप माँ को भी डैडी कहने लगते हैं, दोस्त के बाप को भी डैडी कहने लगते हैं, माँ को मम्मी कहने लगते हैं, क्योंकि उससे दोस्ती है और उसके बाप माँ से भी संबंध स्थापित हो जाता है। तो उसी प्रकार से कह रहे हैं कि मेरा तो आपसे कुछ भी संबंध नहीं है कृष्ण, ये उनकी नम्रता है, ये पितामह भीष्म का भगवत्ता देखने को आता है। कोई एक इस श्लोक से विजय सखे रति अस्तुमी नवद्धा, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मानो वो याद कर रहे हैं कि मैं तो हमेशा आपके विरुद्ध काम किया हूं, अभी लड़ाई हुई थी, इस लड़ाई में ऐसे पांडवों के विरुद्ध मैं लगा हुआ था, लड़ाई कर रहा था, लेकिन वो अभी कृष्ण की इच्छा थी। कृष्ण बैलेंस करने के लिए पितामह भीष्म को उधर रख दिए थे, जैसे कभी कभी हम लोग कबड्डी खेलते हैं ना है? तो या फुटबॉल खेलते हैं तो 11 आदमी इधर 11 आदमी इधर है, कभी कभी बहुत एक्सपर्ट लोग एक साइड में हो जाते हैं और कमजोर लोग एक साइड में, तो रेफरी कहता नहीं कुछ इधर चले जाओ कुछ इधर चले जाओ, तब तो खेल का मजा आएगा, मजा नहीं आएगा। तो वैसे ही कर्ण को और पितामह भीष्म को भगवान बैलेंस करने के लिए रख दिए थे, नहीं तो महाभारत युद्ध 3 आदमी जीतने में सक्षम थे, पितामह भीष्म, कर्ण और अर्जुन, ये 3 लोग असमय, कोई समय की गणना नहीं थी, जीत सकते थे पूरा, इतने शक्तिशाली थे 3 लोग। लेकिन भगवान पलड़ा ठीक रखने के लिए एक तरफ रख दिए कर्ण को और पितामह भीष्म को जो बहुत शक्तिशाली हैं, और एक तरफ अर्जुन को अकेले रखे, क्योंकि भगवान भी साथ में थे ना, भगवान लड़ाई नहीं किए लेकिन बहुत कुछ किए, क्या क्या किए हैं वो आगे इस श्लोक आगे के श्लोक में बताया जाएगा कि भगवान क्या नहीं किए, अस्त्र शस्त्र धारण नहीं किए और सब कुछ किए अस्त्र धारण के अलावा। तो वही कहते हैं कि मैं विजय सखे रति में अनवद्धा, अकारण ही निष्काम भाव से मेरा मन विजय सखा कृष्ण में पारसार्थी में लगा रहे, जो कैसे हैं त्रिभुवन कमनम, संसार में कृष्ण कमनीय हैं, सब लोग को कुछ न कुछ कामना है, सब लोग कुछ न कुछ इच्छा है, कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है, कोई धन चाहता है, कोई जन चाहता है, कोई स्वास्थ्य शरीर चाहता है। यदि कामना करना है तो कामना करना चाहिए कृष्ण का, वो कमनीय है। त्रिभुवन कमनम, तीनों भूर्भुव स्व में कृष्ण ही कमनीय है। यदि कामना करनी हो तो एकमात्र कामना करें कि मैं कृष्ण का दर्शन कर सकूं, कृष्ण का सेवा कर सकूं, कृष्ण के लिए कुछ कर सकूं, यह कामना जो है वह श्रेष्ठ कामना है। उनके वर्ण का तमाल वर्णम, श्याम वर्ण के भगवान कृष्ण हैं। रवि कर गौरांबर दधाते, और जब रवि यानी सूर्य जब उदित होते हैं तो पीला जो दिखाई पड़ता है, जो रोशनी निकलती है सूर्य के रेज जो आते हैं, उस पीले रेज के समान
सूर्य के तप्त रेज के समान जो पीताम्बर धारण किए हुए दधाने, और उनके मुखारबिंद पर जटा जुट, उनके बाल घुंघराले बाल लटक रहे हैं, वैसे प्रभु वे कृष्ण जो अर्जुन के सखा हैं वे हमारे ध्यान के विषय हों, उन पर ध्यान कर रहे हैं। अब आगे कहते हैं कैश्व में, जुधित जुधितुरगज विभ्रुषम विश्वकब कचलुलितम श्रमवारी अलंकृतम आस्ये ममनिशितसरे विविद्धमानम त्वचि विलसत कवचे अस्तु कृष्ण आत्मा करें। अब महाभारत के उस दृश्य का याद कर रहे हैं जब कृष्ण अर्जुन का रथ हांक रहे थे और एक तरह से पितामह भीष्म थे तो दर्शन किए कृष्ण का, किस प्रकार से जब उस समय पक्का रोड तो था नहीं, तो जब घोड़े का टाप जब भूमि पर पड़ता था तो धूल उड़ता था, और इस प्रकार से ये धूल उड़ उड़ करके भगवान के शरीर के चारों तरफ फैला हुआ था। और वह धूल भगवान का केस खुल गया था, उसमें धूल लगे हुए थे, धूल के कण लगे हुए थे, भगवान के शरीर से पसीना निकल रहा था और धूल से श्वेत पसीना दिखाई पड़ रहे थे, धूल धूसरित। भगवान बहुत कठिन परिश्रम कर रहे थे, रथ हांकना आसान नहीं है, जैसे आजकल तो गाड़ी है उसमें पावर स्टीयरिंग है तो आसान है, पहले के ट्रक वगैरह में पावर स्टीयरिंग नहीं, चलाते चलाते एकदम तकलीफ होता था, तो ये तो रथ चला रहे हैं तो उसका ध्यान कर रहे हैं कि भगवान का जो बाल घुंघराला बाल है वो खुला हुआ है केस, और घोड़े के टाप से जो धूल उड़ता है वो उनके बाल में लगा हुआ है, कठिन परिश्रम करने के चलते पसीने बह रहे हैं और तीक्ष्ण बाणों से जो भगवान पर बेधा गया था, इन सब से भगवान का सौंदर्य एक बहुत ही सुंदर सौंदर्य है, उस सौंदर्य कहते हैं कि मेरा मन उन्हीं कृष्ण के पास चला जाए। तो इस प्रकार से अन्य आगे का जो श्लोक है उसमें भी ध्यान परक हैं श्लोक हैं और पितामह भीष्म ध्यान किए हैं, तो अभी हम लोग यहीं रखेंगे और आय का जो श्लोक है वह शाम को बताया जाएगा, लेकिन मैं कुछ दिखाना चाहता है, रेडी है? अरे भी लगाया नहीं, ओके गन सो हियर आल्सो। सो जो हम लोग अभी प्रचार करने गए थे, एनीवे ये अब तक से दो प्रार्थना किया गया और इसको मैं संक्षिप्त में कहना चाहूंगा कि जो दो प्रार्थनाएं हैं, दो स्तुति किए हैं, वे कहते हैं कि मेरा मन कृष्ण के उस स्वरूप में लगा रहे, दो स्वरूप का वर्णन किया गया, कौन कौन दो स्वरूप? हाँ हाँ उस स्वरूप का, और दूसरा हाँ जो अर्जुन के सखा हैं, विजय सखे, जो अर्जुन के सखा हैं जो त्रिभुवन में कामनीय हैं, जिनकी कामना संसार में सब लोग करते हैं, जो तमाल वर्ण के हैं, श्याम सुंदर हैं और पीताम्बर धारण किए हुए हैं और उनके कपोलों पर घुंघराले बार लटक रहे हैं, वे भगवान हमारे ध्यान के विषय बने। तो दो श्लोकों में दो ध्वान का विषय। अब यह जो कुछ दिखाया जा रहा है, यहां दिखाइए ना कि मैं कंप्यूटर हियर, ब्रिंग द बोर्ड हियर, ब्रिंग द बोर्ड हियर, आई थॉट यू मस्ट हैव केप्ट एवरीथिंग रेडी, इसीलिए मैं 9 बजे खत्म किया क्लास। ठीक है, जो भी है लगा, आप देर हो जाएगा। आप लगाओ उसको। हाँ हाँ बोले बोले। कर्ण में सदैव कृष्ण के प्रति भक्ति भाव था, कभी यह समय नहीं था कि वो तो पार्टी चेंज किए थे लड़ाई करने के लिए, नहीं तो उन्हें हमेशा कृष्ण के प्रति भक्ति भाव था। यदि कृष्ण जबरदस्त कृष्ण किसी जबरदस्ती करते नहीं, यदि कहते तो कर्ण सब कुछ करने के लिए तैयार थे। क्योंकि एक जो समाज का रीति रिवाज है, जो मौलिक धर्म है, उसको त्यागना नहीं चाहते थे। मित्रता का जो धर्म है उसको त्यागना नहीं चाहते थे।
तो वो एक आदत के खिलाफ
या ये भी इस तरह देख सकते हैं कि यदि हम आध्यात्मिक चीज को छोड़ करके भौतिक चीज की तरफ ही फंसे रहेंगे तो क्या गति होती है, जैसे कर्ण का हुआ। यदि कृष्ण का आज्ञा पालन कर लिए होते, लेकिन वे चाहते थे कि युधिष्ठिर महाराज राजा बने। यदि कर्ण स्वीकार कर लिए इधर से लड़ाई किए होते तो पलड़ा भारी होता नहीं, ऐसे भी दुर्योधन का पलड़ा हल्का हो जाता है। और दूसरा बात, यदि युधिष्ठिर को पता चलता कि कर्ण मेरा बड़ा भाई है तो युधिष्ठिर थोड़ा भावुक भी थे, कहते कि नहीं यही राजा बनेगा, हम राजा नहीं बनेंगे। क्या हुआ? हाँ, सो एनीवे, तो हम लोग एस्कान पटना मंदिर है, यहां थोड़ा कर लेंगे। एस्कान पटना, मंदिर के अंदर है, बहुत स्लो चल रहा है। क्यों? नहीं, स्लाइड बंद कर दो ना। आई कैन जस्ट गो लाइक आई कैन गो फटाफट, नहीं तो ऐसा बहुत देर लगेगा। पटना में मंदिर बन रहा है, ये मंदिर का ही दृश्य है। हाँ, और ये मंदिर फर्स्ट फ्लोर पर है। ये कितना श्रेणी है, हम लोग बस उतना श्रेणी नहीं, वो ज्यादा श्रेणी वाला मंदिर है, वो श्रेणी बनाया गया है, ऊपर मंदिर है। टेम्पल हॉल ये नहीं हो रहा भाई, गड़बड़ लगता है, कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। व्हाट विल डू, नहीं शाम को इसको एडिट कर देते हैं, हैं? एडिट करते हैं, बहुत फोटो है ना, तो कुछ 10-15 करेंगे, शाम को दिखा देंगे 10 मिनट। लेकिन अभी नहीं चलाएंगे, बहुत फोटो है, इतना करीब 200-250 फोटो है। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा अंगोनिताय कृष्ण कृपा प्रभु प्रश्न है। हाँ लगा साइंस बहुत आगे बढ़ गया है, हम तो पुराने जमाने के हैं। आ गया इसमें है? आया क्लियर है अभी? वो दाढ़ी दिखाई पड़ता है, इस फोटो में बहुत लोग कमेंट दिए हैं। ब्रह्मचारी है ना, कैन आई सी ऑल द फोटो एट अ टाइम दैट आई कैन व्हाट व्हिच एवर वन आई वांट, वन बाय वन गोइंग इज तो कैसे दिखा सकते हैं, हाउ कैन आई वांट टू क्लिक, आई वांट टू शो देम आल्सो नो।
अब एंटर कर दीजिए,
ओ इट विल गो ऑन दैट वे ओनली,
अदरवाइज हियर ओनली यू कैन डू इट फास्ट।
कैसे
ऐसे करना
चाहिए? अरे तो एक ही चीज अब देख रहे हैं अलग अलग ना, आई थिंक इवनिंग टाइम करें हम लोग, कट कट पेस्ट कर लेंगे। शाम को प्रोग्राम हुआ था, जितने डोनर लोग आए थे करीब 500 डोनर आए थे। ये टोपी वाले सबसे बड़े डोनर हैं, 2.5 करोड़ दिए हैं। हैं? ये टेम्पल हॉल है, इतना बड़ा, इतना बड़ा तो नहीं है, छोटा है। ये अपने गरुण जी हैं, यहां पर आने वाले हैं, कानपुर आने वाले हैं, लेकिन पटना से नहीं, ये जयपुर से आ रहे हैं। वो व्हाट्सएप पर भेज दिया था फोटो, इसमें आ गया। ये बिहार के एक मिनिस्टर हैं, इंडस्ट्री मिनिस्टर, तो अभी नया गवर्नमेंट बना हुआ था ना, तो हम लोग, जय कुमार सिंह का नाम है, तो हम लोग मिलने गए थे, हमारे गांव के हैं। ओके, ये बहुत सुंदर आर्टिकल आया था, आज देश में 21 करोड़ युवा उचित मार्गदर्शन के अभाव में भटकाव के दौर से गुजर रहे हैं, इन्हें भक्ति की राह पर लाना होगा, इसके बगैर युवाओं का व देश का कल्याण संभव नहीं है। इस कारण ऐसे युवाओं को कृष्ण भक्ति से जोड़कर उनका उचित मार्गदर्शन करेगा, साथ ही हर गांव शहर में कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार तेज किया जाएगा। यह कहना है इस्कान के देवकीनंद दास का, देवकीनंद दास इस्कान, बिहार झारखंड, यूपी समेत कई राज्यों के जोनल सेक्रेटरी हैं। वे पहले बिहारी हैं जिन्हें इस्कॉन में इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। पेपर वाले कुछ भी लिख देते हैं। वे पहले बिहारी हैं जिन्हें इस्कॉन में इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। सोमवार को पटना में दैनिक कैसे हाँ ठीक है कहा कि अगले साल पटना में इस्कॉन से जुड़े बिहारियों का एक बड़ा सम्मेलन होगा, भक्तों का सम्मेलन। ऑल ओवर वर्ल्ड में भक्त लोग हैं ना। इस सम्मेलन में देश दुनिया में कृष्ण भक्ति की अलख जगा रहे बिहारियों को आमंत्रित किया जाएगा, साथ ही उनसे भक्ति व समाज कल्याण के कार्यों में सहयोग लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि युवाओं के कल्याण के साथ साथ इस्कॉन के बुद्ध मार्ग में निर्माणाधीन श्री बांके बिहारी मंदिर का शीघ्र उद्घाटन उनकी प्राथमिकता है। यह भी बताया कि पटना का मंदिर जन मंदिर होगा जिसमें बिहार का गौरव दिखेगा। तो कुछ भी काट छांट देते हैं। हमें कानपुर मंदिर का जन मंदिर कहा था, उसमें डाल दिया वो लोग। और डेली पेपर में आता था। अच्छा उधर कोई सुन कहाँ चला गया? यू गॉट टू चेंज योर कंप्यूटर नाउ, इट इज टू ओल्ड। कुछ हो ही नहीं रहा है। हाँ एक कोई बोला कि रमेश बाबा ओझा का है। ये वहां पर गांव में बड़ा अच्छा प्रचार होता है। तो एक गांव है, उस गांव का नाम है पटशर्मा। लोकेश्वर प्रभु कहाँ है ना। हाँ तो गांव दो भाग में बटा हुआ है, ईस्ट और वेस्ट में। तो लालू प्रसाद कहते हैं कि एक मथुरा है और एक गोकुल है एक गांव। वहां पर 250 लोग हैं जो सलामला जप करते हैं, और जहां देखो सब तिलक कंठी धारण किए हुए लोग चल रहे हैं। हम लोग मॉर्निंग वॉक गए, बहुत लोग मिले। तो वहां पर रात्रि प्रोग्राम हुआ था। मुझे याद आ रहा था गांव का दिन कि हम लोग कैसे बिहार में ऐसे प्रचार करते थे गांव में। ठीक वैसे ही कृष्ण कृपा प्रभु और अधोक्षज प्रभु बनारस के प्रश्न। और हम लोगों ने गीता भी वितरण किया। उसके बाद सुबह में ये दूसरे गांव में, हमें उसी गांव में ईस्ट और वेस्ट, अब ईस्ट में गए थे हम लोग। और वहां पर सुबह सुबह दही चूड़ा खूब खाए दबा करके है। और गांव के लोग आए थे वहां पर, कीर्तन किया, प्रवचन किया। उसके बाद यह असली है, इसका नाम है पीर, क्या है पीर, पीर पैंती, जानते हैं अब। अच्छा एक पीरपैंती जगह है जहां पर बना बनाया मंदिर हम लोगों को दान मिला हुआ है। तो वहां पर थोड़ा है, मैं लेक्चर दिया भक्तों को। बड़ा अच्छा जगह है, एक गेस्ट हाउस का दृश्य है। अब ये है वहां का कनाई नटशाला का, ये गंगा जी हैं। खत्म हो गया अभी असली रूप। चलो भाई जल्दी करो। ये फोटो आप लोग क्यों लिया, कैसे प्रो? हाँ ये ठीक है ना। बड़ा सुंदर पानी गंगा जी का। खरे हम लोग दो गाड़ी में गए थे, 10 लोग थे। हाँ मंदिर ऊपर है, गंगा जी नीचे है, सीढ़ी चढ़कर को बजाते हैं मंदिर में। ये मंदिर का, मंदिर जाने का सीढ़ी है। सुंदर गोपाल प्रभु और पटना का, ये वहां का मंदिर है, वहां ठाकुर जी हैं, कन्हैयानटसला के नृसिंह भगवान है। एक बार चलेंगे हम लोग भी कन्हैयानटसला, यहाँ से भगवान चेतन महाप्रभु का चरण चरण चिन्ह, ये कृष्ण का और राधा रानी का चरण चिन्ह। ये वहां का गेस्ट हाउस, ये पीर पैंती का गेस्ट हाउस है। साढ़े 3 एकड़ जमीन है। अच्छा ये बंगाल जैसा लगता है, खूब ग्रीनरी है, बहुत ट्री है और रियली गुड मसाला भी है। ये मंदिर वो बना बनाया था, वो मंदिर बना दिए थे, भगवान शिव का मंदिर है, तो बाद ये ब्रह्मचारी आश्रम है, ये अब नया मंदिर बना रहे हैं। 3 अल्टर होगा, बीच में राधा कृष्ण का, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, एक साइड में राधा कृष्ण और एक साइड में गौर नित्याय। ये मंदिर नया बना रहे हैं, हाँ रामनवमी तक इसका उद्घाटन करने का, और ये बना हुआ है, इसमें भगवान शिव का है, ये ब्रह्मचारी आश्रम है। ऐसा तालाब यहाँ बनाना है, मैं देखा कहीं पर तालाब, सूखा तालाब था, मैं चलो फोटो ले लेते हैं, अमृतेश प्रभु ऐसा ही बनाना है तालाब, सीढ़ी रहेगा ताकि सब लोग नहा सकें। ये रास्ते में आ रहे थे तो हमारा एक भक्त है, अभी वो नया नया एमएलए हुआ है, एमएलए अशोक यादव, तो मालूम पड़ा कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो कहा कि प्रभु जी आपके हमारे पास कुछ समय के लिए आना पड़ेगा, पूरा रोड जाम करा दिया, एमएलए था धाकर, तो सब लोग पूछ रहे थे कि ये कौन है, कोई बड़ा नेता आ रहे हैं क्या, तो जाम हो गया, तो उसने कहा हमारे गुरु जी आ रहे हैं। बिहार में स्वागत खूब करते हैं मालूम, जगन्नाथपुरी वाला भाई दिखाओ, ये जगन्नाथपुरी का है जहां पर भूमि पूजन हुआ और 6-7 हजार डिबोटी आए थे, ऐसे पंडाल पूरा पैक्ड है। ऐसा मंदिर बनेगा जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथ जी के स्टाइल का, भक्तों पर प्रभु हैं, गौर नारायण महाराज, वासुदेव प्रभु, ब्रजहरि प्रभु, मैं चेयरमैन हूं, कमेटी एक है, ब्रजहरि प्रभु वाइस चेयरमैन है, मैं चेयरमैन हूं, वासुदेव प्रभु सेक्रेटरी हैं, भक्ति पुरुषोत्तम महाराज, जयपिता का महाराज, नहीं ये नेशनल प्रोजेक्ट है, जैसे मायापुर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है ना, तो पूरी नेशनल प्रोजेक्ट है, 25 एकड़ है, लोग हाँ हम उसमें 200 करीब अपार्टमेंट होंगे, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, और 150 गेस्ट रूम होंगे। हम चाहते हैं सेल्फ सफिशिएंट करना, 200 अपार्टमेंट होगा उसको बेच करके पैसा आएगा उसे मंदिर बनाने का, और 150 गेस्ट रूम रहेगा तो उसके, कि जगन्नाथपुरी में बहुत लोग आते रहते हैं। ज्यादा दूर नहीं है, नजदीक है, गाड़ी से आना पड़े, पैदल नहीं, पैदल आधा घंटा, समुद्र किनारे है। गौड़ीय मठ है ना, अपना जो पहले पुराना मंदिर अपना है ना, हरिदास ठाकुर का समाधि उसके बगल में ही है। हाँ चल कर आते हैं, बिरला धर्मशाला से नजदीक है, सुबग महाराज भी थे। हम लोग 8 लोग कमिटी में हैं, मैं चेयरमैन हूँ, भक्ति ब्रजेश प्रभु वाइस चेयरमैन हैं, सेक्रेटरी हैं वासुदेव प्रभु, राधानाथ स्वामी, जयप्रदा महाराज, भक्ति पुरुषोत्तम महाराज, भक्ति प्रभु प्रभु, और बनमाली प्रभु। बनमाली प्रभु वहाँ का प्रेसिडेंट है। तिरुपति, हाँ चलेंगे, हाँ तो ऑर्गेनाइज करना चाहिए, स्पेशली कनाई नटशाला वह जगह है जहां भगवान चेतन महाप्रभु ने कृष्ण का दर्शन किया प्रथम बार, और जब प्रथम बार वे वृंदावन आ रहे थे तो वृंदावन नहीं आए, कनाई नटशाला से वापिस लौट आए। एक नरसिंहानंद ब्रह्मचारी थे, वो सुने कि महाप्रभु जब वृंदावन जा रहे हैं तो वे मन में ही रोड बनाने लगे, रोड बनाते 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 कन्हाई नटशाला तक गए, उसके बाद रोड बनिए नहीं रहा था, तो उन्होंने डिक्लेयर किया कि महाप्रभु अब कन्हाई नटशाला से आगे नहीं जा सकते हैं, वहीं तक जाएंगे। तो फर्स्ट टाइम महाप्रभु कन्हाई नटशाला गए। ये फोटो बड़ा फेमस है जहां पर कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं और पेड़ पर ऐसे लुढ़के हुए हैं, वो कन्हाई नटशाला का फोटो है, चेतन चेतानवी में भी है। तो वहां पर वो दर्शन हुआ कृष्ण का सर्वप्रथम चेतन महाप्रभु को, चेतन महाप्रभु स्वयं भगवान है लेकिन फिर भी कृष्ण का साक्षात दर्शन जो हुआ वहां पर, वह जैसे गया से उनकी भक्ति प्रज्वलित हुई और वहां कृष्ण का विरह शुरू हुआ कन्हाई नटशाला से। तो विरह की स्थली है और बहुत सुंदर जगह है, चारों तरफ पहाड़ है, नीचे गंगा जी बह रही है, तो रियली गुड प्लेस, चल सकते हैं हम लोग पटना भागलपुर होते हुए। पटना से अभी तो रोड अच्छा बना रहे हैं, अभी तक तो बना नहीं, 40 किलोमीटर दूरी तय करने में 4 घंटा हमको लगा था, तो समझ सकते हैं पटना का रोड कैसा था। हाँ वो वहीं से महाप्रभु यहां पर आए थे, नहीं वो कौन जगह है, रामकेली, रामकेली नजदीक में है, ये बॉर्डर है यूपी का। एनीवे तो इस प्रकार से ये टूर रहा हम लोगों का एक हफ्ते का, और ये जगन्नाथपुरी का जयप्रदा का महाराज ने एक किया। तो 5 साल का प्रोजेक्ट है, 5 साल में मंदिर बनाना है और गौर पूर्णिमा से प्रारंभ हो जाएगा मंदिर बनाना। 5 साल तो क्या, मंदिर बनाना है, रूम बनाना है, रूम तो 1 साल में बन जाएंगे सब, रूम बनाना है, अपार्टमेंट रूम, उसमें कोई तकलीफ नहीं है, मंदिर में समय लगेगा, अभी वो डिसाइड करेंगे, डिटेल में नहीं गया हूं अभी, अब फिर मीटिंग होगी अभी। जय श्री प्रभुपाद की जय, ग्रंथ भागवतम की जय। Thank you. पूरी में तो भक्त बहुत बनेंगे पूरी
में।
पूरी में लोग आते हैं पहले नहीं के वृंदावन हुआ पूरी।